शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय ते परमाद्वैत विज्ञानं कृपया यो ददाति वै सोऽयं गुरुर्गुरु साक्षात् शिव एव न संशय शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
यजुर्वेद के संहिता भाग के ईशा वाष्योपनिषद नामक 40वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। ईशा वाष्योपनिषद के प्रथम दो मंत्रों के द्वारा जो दो निष्ठाएं बताई गई हैं, ज्ञान निष्ठा एवं कर्म निष्ठा, तो द्वितीय मंत्र ने बताई हुई कर्मनिष्ठा का ईशा वाष्योपनिषद के उत्तरार्ध में यानी नवम मंत्र से 18वें मंत्र तक व्याख्यान है। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ज्ञान और कर्म, इन दोनों में अंतर ये है कि ज्ञान पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं होता, प्रमाण के अधीन होता है। वह ज्ञान पुरुष के प्रयत्न से निष्पन्न होता है वह कर्म। तो उपासना भी मानसिक वृत्ति रूप होने पर भी और लेकिन ज्ञान नहीं है। और ये जो आपकी चक्षुरादि इंद्रियों से कहो या शब्द प्रमाण से कहो होने वाली अंतःकरण की जो वृत्ति है वह भी मन का ही एक परिणाम है। उपासना भी अंतःकरण की वृत्ति रूपा है तो ज्ञान भी अंतःकरण की एक वृत्ति ही है। लेकिन उपासना को तो आप मानस कर्म इस कोटि में लेते हैं, मनोनिर्वर्तक कर्म उसे माना जाता है और ज्ञान को कर्म कोटि में नहीं लिया जाता, इसलिए कि वह मन की वृत्ति रूप होने पर भी प्रयत्न से नहीं होता अपितु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अंतःकरण की वृत्ति बनती है, उसे प्रमा ज्ञान इन नामों से कहा जाता है। उसे तो ईशावास्यम इदम सर्वम इस प्रथम मंत्र के द्वारा बताया गया ज्ञान निष्ठा को, और वह साधन है आपके दुख का कारणभूत जो अनात्मा शरीर इंद्रियों में आत्माभिमान रूप अध्यास है, उसकी निवृत्ति का, अध्यास की निवृत्ति ज्ञान से होती है। और कर्म तथा उपासनाएं आपके दुख के हेतुभूत अध्यास का निवर्तक जो ज्ञान है, तत्त्वमशादि वाक्यों से अंतकरण में बनने वाली वृत्ति रूप, उस ज्ञान का जो प्रतिबंधक है मल तथा विक्षेप नाम के दोष, उन्हें हटाते हैं कर्म तथा उपासना रूप साधन। और कर्म तथा उपासनाएं इन्हें संपन्न करने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है, मनुष्य के प्रयत्न से निर्वर्त्य है कर्म तथा उपासना, इसलिए इनको कर्म कोटि में लिया गया, कर्मनिष्ठा में लिया गया। और ये जो कर्म शब्दित उपासना भी है मन से निर्वर्त्य व्यापार एवं शरीर इंद्रियों से निर्वर्त्य व्यापार यानी क्रियाएं, इनका अलग अलग ये कर्म तथा उपासना ये नाम होने में हेतु हुआ। शरीर इंद्रिय के बिना भी केवल मन से निष्पन्न होता है जो व्यापार जो क्रिया, वह उपासना कोटि में आती है, उसे उपासना कहते हैं। और शरीर तथा इंद्रियों से मुख्य रूप से जिसकी निष्पत्ति होती है उसे कहा जाता है कर्म। ये शरीर इंद्रियों का व्यापार भी दो कोटि का हुआ, दो प्रकार का है, एक शास्त्र से प्रेरित शरीर इंद्रियों से होने वाला व्यापार यानी शरीर इंद्रियों की क्रिया, और दूसरी स्वाभाविक क्रिया स्वभाव से यानी आपके अशुभ संस्कार से वासना से प्रेरित होने वाली शरीर हो करके शरीर इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं, उन्हें स्वाभाविक कर्म कहा जाता है, जो शास्त्र निषिद्ध प्रवृत्तियां हैं अशुभ संस्कार से शरीर इंद्रिय से होने वाली, उन्हें कहा जाता है स्वाभाविक कर्म। उसे ही ग्यारहवें मंत्र में मृत्यु शब्द से कहा। ऐसे मन का चिंतन भी शास्त्र से प्रेरित होकर के मन जो चिंतन करता है उसका नाम है उपासना, और अशुभ वासना से प्रेरित होकर के जो शास्त्र निषिद्ध चिंतन हो रहा है उसे कहा जाता है स्वाभाविक चिंतन, उसका भी नाम है मृत्यु। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, इस ग्यारहवें मंत्र के उत्तरार्ध में प्रयुक्त जो मृत्यु शब्द है वह अशुभ वासना से प्रेरित चिंतन को तथा शरीर इंद्रियों की क्रियाओं को यानी कर्म को बता रहा है। और अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, इसमें अविद्या शब्द का अर्थ है शास्त्र प्रेरित जो कर्म, शास्त्र के द्वारा बताए हुए कर्म का शरीर इंद्रियों से अनुष्ठान हुआ, अनुष्ठित शरीर इंद्रियों से अनुष्ठित कर्म, वो अविद्या शब्द का अर्थ है। विद्या शब्द का अर्थ है शास्त्र से प्रेरित मानसिक चिंतन रूपी उपासना। तो अविद्या यानी शास्त्र प्रयुक्त जो कर्म है वह स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन रूपी मृत्यु का अतिक्रमण कराता है। यानी शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान करने से शुभ संस्कार बुद्धि में बन जाते हैं और शुभ संस्कारों से फिर अशुभ संस्कार निवृत्त होते हैं, तो स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन छूट जाता है। और जो कर्म से पुण्यात्मक अंश निष्पन्न हुआ जिसे धर्म कहा जाता है उससे पहले से बना हुआ जो स्वाभाविक कर्म एवं चिंतन था जिसे अधर्म शब्द से पाप शब्द से कहा जाता था वह निवृत्त हो जाता है। इसलिए कहा अविद्या मृत्युं तीर्त्वा। और विद्या यानि शास्त्रीय चिंतन जो रहा वो क्या कराता है, तो अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। अमृतत्व का अर्थ है हिरण्यगर्भ के साथ सायुज्य की प्राप्ति। तो इस प्रकार ग्यारहवें मंत्र ने कर्म और उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक कर्म एवं चिंतन रूपी मृत्यु का अतिक्रमण करके इस ब्रह्मांड के अध्यक्ष हिरण्य गर्भ का सायुज्य प्राप्त करते हैं यह बात बताई। और जिसे हिरण्य गर्भ का सायुज्य प्राप्त होता है वह जब हिरण्य गर्भ की आयु समाप्त होती है तो उसके पश्चात विधेय मुक्ति को प्राप्त करता है। विधेय मुक्ति को प्राप्त करना मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। और उस प्रकार की विधेय मुक्ति कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठाई प्राप्त कर रहा है, यह बात ग्यारहवें मंत्र से बता दी गई। कुछ जैसे कर्म और उपासना का यहां पर समुच्चय अनुष्ठान बताया, ऐसे कार्य ब्रह्म और कारण इन दोनों की साथ साथ उपासना का विधान करने के लिए बारहवें मंत्र के द्वारा केवल कारण की उपासना का तथा केवल कार्य की उपासना से होने वाला जो दोष है उसकी निंदा शास्त्र बता रहा है बारहवें मंत्र में। तो बारहवें मंत्र का उच्चारण किया जाए। अन्नंतम प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो ये संभूत्यामृताः। तो ये कहते हैं तो ये असंभूतिम उपासते ते अन्हन तमः प्रविशन्ति, ऐसा पूर्वार्ध का अन्वय है। तो शास्त्राधिकारी मनुष्य हैं, शास्त्र हैं वेद, वेदाधिकारी मनुष्यों में जो वेद ने बताया हुआ असंभूति उपासना रूपी साधन करता है। इसमें असंभूति शब्द का अर्थ है प्रकृति, अविद्या, अज्ञान, अव्याकृत, माया, ये सब जिसके नाम है उसे यहां पर असंभूति शब्द से समझना। संभूति कहते हैं कार्य को, और यानी जिसकी उत्पत्ति होती है, जो उत्पन्न होता है वो है संभूति, और जो उत्पन्न नहीं होता उसे यहां पर असंभूति शब्द से कहा जा रहा है। उत्पन्न न होने वाले दो हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा पुरुष। जो उत्पन्न नहीं होता उसे अनादि शब्द से कहा जाता है, और गीता के 13वें अध्याय में भगवान दो को अनादि बताता है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति को भी और पुरुष को भी तुम अनादि समझो, ये दोनों अनादि हैं। आदि कहते हैं उत्पत्ति को, और वह उत्पत्ति जिसकी नहीं होती उसको कहा जाएगा अनादि। आदि कहते हैं कारण को, और कारण जिसका नहीं है उसे अनादि कहेंगे, कारण से जो रहित है। तो जिसकी उत्पत्ति होगी, जो उत्पन्न होगा उसका तो कारण हो जाएगा, कार्य का कारण हुआ करता है। तो जो प्रकृति है, जिसे माया कहा जाता है, अविद्या कहा जाता है, अव्याकृत कहा जाता है, वह उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उसका कोई कारण भी नहीं है, वो अनादि है। तो गीता के 13वें अध्याय में जिसे अनादि प्रकृति कहा जा रहा है, उसी प्रकृति को इस मंत्र में असंभूति शब्द से समझना। ये असंभूतिम उपासते का मतलब प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति कहते हैं गुणत्रय की साम्य अवस्था को। गुणत्रय की, गुणत्रय है सत्व, रज, तम, ये तीन गुण हैं, और ये तीनों गुण जब एक समान अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था का नाम है प्रकृति, और उसकी जो उस अवस्था की उपासना वो है कारण अवस्था, उसे कारण अवस्था कहते हैं। और जब कार्य अवस्था होती है, सृष्टि अवस्था होती है, तो ये तीनों गुण विषम अवस्था में आते हैं। सत्वगुण बढ़ा हुआ रहेगा तो रजोगुण तमोगुण कम रहेंगे, कहीं रजोगुण बढ़ा है सत्वगुण और तमोगुण न्यून है, यानी गुणत्रय की विषम अवस्था कार्य अवस्था कहलाती है, और गुणत्रय की साम्य अवस्था का नाम है प्रकृति, उसे यहां पर असंभूति शब्द से कहा जा रहा है, वो कारण अवस्था है। वह है कारण ब्रह्म की उपाधि। तो यहां पर उपाधि की मात्र जो उपासना कर रहे हैं उनको लेना है, इसलिए असंभूति शब्द का प्रयोग किया है। कि ये असंभूतिम उपासते का अर्थ है कि गुणत्रय की साम्य अवस्था प्रकृति नाम से कही जाने वाली, और उसी का जो चिंतन कर रहे हैं, उसी की उपासना कर रहे हैं प्रकृति की, अज्ञान की, और तो उनको उसका फल क्या प्राप्त होता है, तो कहते हैं अंधन तमः प्रविशन्ति। जो गुणत्रय की साम्य अवस्था प्रकृति शब्दित है, असंभूति शब्द से भी जिसको कहा जा रहा है, उसी की उपासना करते हैं, वे अंधन तमह को प्राप्त करते हैं, यानी घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रकृति अज्ञानात्मिका है, अज्ञान ही है, अदर्शन है, और उसी प्रकृति लय को प्राप्त करते हैं। अंधन तमह प्रविशन्ति का अर्थ है यानी प्रकृति में लीन होता है, तद्रूप हो जाता है। ये नियम होता है, शास्त्र कहता है कि आप अपने मन से जैसा चिंतन करोगे मन वैसा ही रूप धारण करता है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, यानी जैसा मन से चिंतन करते हैं। कहा जाता है ना कि कीट उस भ्रमि का चिंतन करते करते भ्रमी बन जाता है। ऐसे ये जीव यदि प्रकृति की उपासना करता है, प्रकृति का ही चिंतन करता है, तो क्या हो जाता है कि धीरे धीरे प्रकृति रूप ही बन जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है। जैसे शरीर का आत्म रूप से चिंतन करते करते शरीर रूप बन गया, अपने आप को जो प्रकृति का कार्य है प्राकृत, पांचों भूत और पांचों भूतों का कार्य भौतिक ये शरीर, तद्रूप ही समझ रहा है शरीर का चिंतन करते करते, शरीर रूप समझ रहा है चेतन होते हुए भी। ऐसे जो प्रकृति की उपासना कर रहा है, तो वह प्रकृति की उपासना जब परिपक्व हो जाती है तो उनका गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप जो एक अज्ञान की अवस्था है जो महाप्रलय में रहती है, वही उनकी अहंता का विषय बन जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो कार्यात्मक है वह उनकी अहंता का विषय नहीं बनेगा, अभी तो उनकी अहंता का विषय बनेगी प्रकृति की वह अवस्था, गुणत्रय की साम्य अवस्था का अर्थ हो जाए जो एक प्रकार से जो नींद में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एक में भी आपकी अहंता नहीं होती, और उस समय आपकी अहंता का विषय बन जाता है जैसे अज्ञान, वो जड़ प्रकृति को कारण शरीर को उस समय आत्म रूप से विषय बना करके सुसुप्त पुरुष रहता है। ऐसे ही जो प्रकृति की उपासना करते हैं वे लंबे काल के लिए, ये कहा गया है वायु पुराण में 1,00,000 मन्वंतर के लिए वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं, एक प्रकार से सो जाते हैं। और केवल सोए रहें तो एक प्रकार से वहां पर भी तो कोई ज्ञान आदि तो नहीं है, जड़ अवस्था है, उस जड़ अवस्था को प्राप्त होना है। इसलिए कहा गया कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, जो प्रकृति की उपासना करते हैं वे 1,00,000 मन्वंतर तक उसी प्रकृति में लीन होकर के रहते हैं, पड़े रहते हैं उसी में, और वो प्रकृति अज्ञानात्मक होने के कारण अंधन तमह इस शब्द से कहा जा रहा है। तो कहा फिर उस प्रकृति की उपासना को छोड़ दिया जा, कार्य की उपासना की जा। तो केवल कार्य की जो उपासना करते हैं उनको तो उससे भी भयंकर अंधकार की प्राप्ति होती है, वो उत्तरार्ध में बताया जा रहा है कि ततो भूय इवते तमह येवु संभूत्याम रताः, अने जो भी ये उ अर्थ है जो भी मनुष्य प्रकृति की उपासना को छोड़ करके केवल संभूति की उपासना यानि कार्य की उपासना में लगे हुए हैं, कार्य ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो उससे क्या हो जाता है? तो संभूत्याम रता है का मतलब है कार्य ब्रह्म की उपासना में ही अभिरत है, उसी में लगे हैं दिन रात। कहते ते ततो भूय इव तमह, पूर्व वाक्य से प्रविशन्ति पद लियाना का अर्थ होगा प्रकृति की उपासना से प्राप्त होने वाला जो अंधकार है उससे भी और घोर अंधकार, उससे भी अधिक अंधकार को वे प्राप्त करते हैं। अभी तो केवल कारण शरीर मात्र उनका, जिन्होंने प्रकृति लय प्राप्त कर लिया, प्रकृति का ही नाम है कारण शरीर, और कारण शरीर मात्र में अहंता थी, और जो कार्य की उपासना करते हैं कार्य ब्रह्म की उपासना, तो कार्य के साथ कारण तो रहेगा ही, जिसका कार्य रूप सूक्ष्म और स्थूल शरीर में आत्माभिमान है, उसका कारण शरीर में भी आत्माभिमान तो रहेगा ही। कारण के बिना कार्य नहीं रहता, कारण कारण तो कार्य के साथ रहता ही है ना। तो जो कार्य की मात्र उपासना कर रहे हैं वे प्रकृति की उपासना से प्राप्त जो अज्ञान रूपी अंधकार था उससे भी और अज्ञान रूपी अंधकार को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब उनके साथ अज्ञान तो है ही है, कारण शरीर तो है ही है, उस कारण शरीर का कार्यभूत जो समष्टि कार्यकरण संघात में आत्माभिमान रूप भ्रांति है। अज्ञान एक कारण है और भ्रांति उसका कार्य है। कार्य है तो कार्य के साथ कारण भी जरूर रहेगा, तो अज्ञान भी उनके साथ है और अज्ञान के साथ साथ अज्ञान का कार्य भ्रांति भी रही, दोनों भी उनमें विद्यमान होने कारण यहाँ कहा जा रहा है कि ततो भूय ईवते तमः प्रविशन्ति। जो केवल कार्य की उपासना में संलग्न है वे तो कारण शरीर तथा कार्य रूप जो समष्टि कार्यकरण संघात है उसके भी अभिमान से युक्त होने के कारण और घोर अंधकार को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब उनके अध्यास की निवृत्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर बारहवें मंत्र में केवल प्रकृति की उपासना की भी निंदा कर दी और केवल कार्य की उपासना की भी निंदा कर दी। तो दोनों का भी कार्य की उपासना तथा कारण की उपासना का अनर्थ फल होने से किसी के मन में आया कि ये दोनों उपासनाएं छोड़ दी जा, कहते छोड़ना भी उचित नहीं है क्योंकि इनका फल भी बताया जा रहा है अलग अलग। यही 13वें मंत्र में बताया जा रहा है, इनका त्याग भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका ये दोनों सफल हैं, सफल का त्याग नहीं किया जा सकता। 13वें मंत्र का उच्चारण किया जाए। अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहूर संभवात इति सुश्रूम धीराणाम येनस्तद विचचक्षिरे। तो संभूति शब्द से पहले जिसको लिया जा रहा था उसको यहां पर संभव शब्द से समझना। यहां वही उपसर्ग है, वही धातु है, केवल प्रत्यय बदल गया इसलिए अर्थ नहीं बदलेगा, उसी अर्थ में प्रत्यय होने से। और असंभूति शब्द से जिसको समझ रहे थे उसे यहां पर असंभव शब्द से समझना। तो संभव और असंभव, तो संभवात का अर्थ है संभूति उपासना से। अन्यद एव आहु यानी कार्य की उपासना का फल अन्य बताते हैं, वो अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति। कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाला कार्य अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, ये संभूति उपासना का फल धीर लोग शिष्ट लोग बताते हैं, जो वेद के अभिप्राय को जानते हैं वे कहते हैं कि संभवात यानी कार्य ब्रह्म की उपासना से अन्य फल होता है यानी अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और असंभवात का अर्थ है संभूति की उपासना से। यहां असंभव शब्द का वाच्यार्थ तो है असंभूति यानी प्रकृति, और लक्षणा से समझना उसकी उपासना। तो प्रकृति उपासना से क्या हो जाता है, तो कहते हैं अन्यत आहु, अन्य ही फल बताया जाता है। वो अन्य फल है प्रकृति लय रूप, प्रकृति में लीन होना